Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to the Q4 FY23 post-earnings conference call of SRG Housing Finance Limited. Today, from the management, we have with us Mr. Vinod Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements. These forward-looking statements may involve risks and uncertainties. Also, this is a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to detail us about the performance during the quarter and the year that went by, the plans and visions for the business in the coming years, post which we can open the floor for Q&A. Over to you, sir.
Jai Jinendra, main aap sabhi ka quarter 4 financial year 23 ki earning conference call mein swagat karta hu. Aasha karta hu ki aap sabhi स्वस्थ होंगे. इस साल हमारा फोकस बिजनेस एक्सपांशन पर था, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग डिस्बर्समेंट एंड एयूम ग्रोथ देखने को मिली है. फाइनेंशियल ईयर 23 में हमारी टोटल ब्रांचेज 62 हो गई है, जो कि पिछले साल 37 थी. फाइनेंशियल ईयर 23 में 124% की ग्रोथ के साथ डिस्बर्समेंट 190.73 करोड़ रहा है, और क्वार्टर फोर में डिसबर्समेंट 136% की ग्रोथ के साथ 79.14 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष 84.89 करोड़ और पिछले क्यू फोर में 33.53 करोड़ था. हमारी लोन बुक 28% की ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल 23 में 438.36 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 340 करोड़ थी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 करोड़ रहा है. क्वार्टर फोर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ रहा है. पेट 70 करोड़ रहा है. क्यू फोर में पेट 4 करोड़ रहा है. टोटल इनकम 16.62% की ग्रोथ के साथ 93.83 करोड़ रही है. क्वार्टर फोर में टोटल इनकम 26.45 करोड़ रही. नेट इंटरेस्ट इनकम 44 करोड़ रही. क्यू फोर में नेट इंटरेस्ट इनकम 12 करोड़ रही है. इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोस लोन बुक का 11% रहा है. नेटवर्थ 133.26 करोड़ हो गई है. ईपीएस 13 रहा है. फाइनेंशियल 23 में हाउसिंग लोन 66% और लेब 34% रहा है, और सैलरीड लोन 24% और सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 76% रहा है. हमारी 100% लोन बुक प्रॉपर्टी के साथ सिक्योर्ड है. हाउसिंग लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 5 लाख और एवरेज एलटीवी 40% है. ग्रॉस एनपीए 2.50% रहा है, और नेट एनपीए 0.51% रहा है. हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट 10.82% रही है. कंपनी ने 12.20% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है. फाइनेंशियल 23 में हमने टोटल 177.40 करोड़ का फंड रेज किया, जिसमें 31% पीएसयू बैंक से, 8% प्राइवेट बैंक, 46% एफआई से और 14% एनएचबी से है. कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है. फाइनेंशियल 23 के दौरान कंपनी में लिक्विड फंड्स 100 करोड़ रहे हैं, जिसमें से 18 करोड़ अनड्रॉन फंड्स हैं. हमारी एलएम पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है. मैं हमारी सभी एम्प्लॉइज का और आप सभी शेयर होल्डर्स का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी पिछले 2-3 साल का जो चैलेंजिंग समय रहा है, उसमें भी हमारे साथ बने रहे हैं, और आपके विश्वास और साथ से ही हम हमेशा मजबूती से खड़े रहे. आशा करता हूं कि आने वाला समय हम सभी के लिए नई ऊंचाइयां लेकर आएगा. एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद. अब आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब.
थैंक यू सर. whoever wishes to ask a question may use the option of raise hand. We have the first question from the line of Agastya Dave. Agastya, you can go ahead and ask your question.
Thank you, Vinay bhai. Am I audible?
Yeah.
Hello, Jain sir. Thank you very much for the presentation, sir. And also, आपने call ऐसे रखा है, sir. ये बहुत useful है. एक और चीज के लिए थैंक यू सर, आपने प्रेस रिलीज में इस बार जो कमेंट्री डाली है एंड वो बहुत क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव के साथ, तो वो काफी यूजफुल और हेल्पफुल है सर, तो आई रियली अप्रिशिएट इट सर. उसके लिए भी आपके आपको थैंक यू, क्योंकि जब मैंने नंबर्स देखे थे तो मुझे एक बार के लिए लगे कि नंबर्स आर बैड, बट देन जब आपकी कमेंट्री मैंने देखी और एयूएम का एंड डिसबर्समेंट्स के नंबर देखे तो काफी काफी उससे चीजें सॉर्ट आउट हुई. So, thank you very much, sir, especially press release के लिए. Sir, मेरा पहला question आपसे ये था कि जो disbursements हमने किए हैं Q4 में, उसका जो distribution है, broadly मुझे idea है, लेकिन सर आप ये बता सकते हैं कि जब आप distribution किसी भी month में होता है आपका, तो उसमें last one week में कितना distribution होता है? Because एक चीज जो देखने में है आपके results में अभी, इवन दो हमारा AUM बड़ा है, डिसबर्समेंट अच्छे हैं, वो अभी पूरा का पूरा PNL में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये डिसबर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है सर मंथ में, एंड कब हमको पूरा का पूरा बेनिफिट आने लगेगा PNL में जो एडिशनल लोन हमने डिसबर्स किए हैं उसका?
बहुत अच्छा अगस्त्य जी, आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए धन्यवाद. आपने पूछा पिछले क्वार्टर में अपना जो डिसबर्समेंट होता है सर, ये जो हम क्या जो सैंक्शन करते हैं वो सैंक्शन अमाउंट अलग रहता है और डिसबर्समेंट अलग रहता है, क्योंकि जितने भी हाउसिंग लोन है उस हाउसिंग लोन में पार्ट पार्ट डिसबर्समेंट टुकड़ों में होता है, लेकिन इसमें जो फिगर आता है वो प्योरली जो डिसबर्समेंट अपन कर चुके हैं वो इसमें फिगर आता है, वही डिसबर्समेंट अपन अमाउंट बताते हैं. क्योंकि जैसे मान लो अगर हमारा सैंक्शन ज्यादा हुआ होगा हाउसिंग लोन में, तो कुछ पार्ट सेंक्शन है वो अगले दो तीन चार महीने में होगा, तो धीरे धीरे उसमें सेंक्शन होता है, जैसे डिसबर्समेंट होता रहता है उस डिसबर्समेंट में इसमें ऐड करते रहते हैं.
सर अगर एक महीने में मान लीजिए 10 करोड़ का डिसबर्समेंट है, सर हाइपोथेटिकल नंबर है, मैं आपसे जो समझने के लिए ये नंबर बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि एक महीने में 10 करोड़ का अगर डिसबर्समेंट है, तो डिसबर्समेंट क्या इवनली स्प्रेड आउट रहता है या ये भी ऐसी चीज रहती है जो जो मंथ के एंड में ज्यादा डिसबर्स होता है या मंथ के पहले डिसबर्स ज्यादा होता है, ये कैसे, ये मंथ के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, इवन एज्यूम कर सकते हैं सर?
एक्चुअल में क्या है ना सर, ये जो डिसबर्समेंट आप जो कह रहे हो ना, कि मंथ के हमेशा क्या लास्ट के 15 से 20 तारीख तक 25 तारीख तक सब आपकी फाइलें आ जाती है, लास्ट के 5 दिन में आपका डिसबर्समेंट ज्यादा नजर आएगा.
ओके ओके.
ये हाँ, स्टार्टिंग में 10 दिन तो क्या होता है बिजनेस प्रोक्योरमेंट के लिए लगता है, फिर 10 दिन प्रोसेस में लगता है, फाइल कंप्लीट होके हमारे हेड ऑफिस पहुंचती है, उसके बाद में डिसबर्समेंट होता है. क्योंकि डिसबर्समेंट जब तक हेड ऑफिस में फाइल आपकी ना पहुंचेगी डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट में, पूरा वो चेक नहीं होगा, पार्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच जाते तब तक डिसबर्समेंट नहीं होता है. तो
हमेशा अगेन क्लैरिफिकेशन के लिए, आप सैंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं या आप डिसबर्समेंट की बात कर रहे हैं?
जी जी जी, डिसबर्समेंट
20 तारीख के बाद से स्पीड पकड़ना स्टार्ट करते हैं.
बिल्कुल 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 सर.
ओके करेक्ट. ओके सर, सर एक मैक्रो क्वेश्चन था सर कि आपको डिमांड कैसी दिख रही है, और इस क्वेश्चन को आप अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सके, एक ओवरऑल डिमांड आपको रूरल इंडिया में कैसी दिख रही है, क्योंकि पहली बार इस क्वार्टर में काफी क्वार्टर्स के बाद बहुत सारी रूरल ओरिएंटेड कंपनीज आर सेइंग कि रूरल में एक्टिविटी पिकअप हो रही है, एंड तो आपको क्या दिख रहा है? दूसरा, आपकी जो पुरानी ब्रांचेस थी, जो आपकी 2 साल से पुरानी ब्रांचेस है, वहां पर डिमांड कैसी है अभी?
बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो आप देखो, जब कोरोना पीरियड से पूरा सिस्टम गया, पिछले आप देखो मार्च के बाद में कोरोना का सब चीजें खत्म हुई, हमने भी अप्रैल के बाद में नई ब्रांचे 25 नई ब्रांचे हमने खोली. ठीक है, मार्केट में ब्रांच खोलने के बाद में स्टार्टिंग में 6 महीने तक तो ये लगा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का असर खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गया और डेवलपमेंट की तरफ इंडिया जाने लगा, तो गांवों में भी रूरल में भी डेवलपमेंट चला, उससे आम आदमी की इनकम जो है बढ़ने लगी. ठीक है, और घर का सपना हर आदमी के मन में होता है, तो जो काम रुक गए थे वो काम सब स्टार्ट हो गए, जो सोच रहे थे कि हम आगे करेंगे उन्होंने भी समय से पहले सब काम मकान बनाना चालू कर दिया, तो इस तरह से अपनी ग्रोथ भी हुई और उसके बाद डिमांड भी बढ़ी. तो पिछले क्वार्टर में डिमांड भी बढ़ी है और काम करने का तरीके भी हमने कुछ चेंज किए, उसके भी रिजल्ट हुए हैं. पुरानी ब्रांचे जो चल रही थी उसमें भी बिजनेस बढ़ा, उन एरियों में बिजनेस बढ़ा, नई ब्रांचे थी तो टीम बनाने बनाने में हमको 6-8 महीने लगते हैं, बनाते बनाते उससे भी बिजनेस बढ़ा. अब जो नंबर अपना पिछले क्वार्टर में है, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट ईयर में ये क्वार्टर में जो नंबर है वो तो अपना 100% होना ही है, क्योंकि अपना एक्सपांशन भी हो गया, ब्रांच भी हो गया, वहां से बिजनेस भी मिला। तो हमारा जो रन रेट हम 25 करोड़ का मान रहे थे, तो हमारा 84 करोड़ के आसपास हमारा क्वार्टर में हुआ, और इसी रन रेट का हम एवरेज पकड़ते हैं तो इस साल में 300 करोड़ का आसपास डिस्बर्समेंट, नया 250-300 करोड़ का डिस्बर्समेंट करेंगे,
जिसमें से पुरानी ब्रांचेस भी उतना ही ग्रोथ दिखा रही हैं, लाइक वो भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा दी हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मिक्स है सर उसमें, क्योंकि आप हाँ, ऐसा नहीं होता है जो 25% ब्रांच, 25 नई ब्रांचें बनी उसमें 100% ब्रांचों ने इनपुट देना चालू कर दिया, कुछ ब्रांचें उसमें चलती, कुछ थोड़ी स्टार्ट होती है, कुछ आती है, तो पुरानी ब्रांचों का दोनों का मिला के ये अपने
सर काफी काफी क्वार्टर्स के बाद, इनफैक्ट काफी सालों के बाद हमारा AUM एक्चुअली बढ़ा है एंड साइजेबल अमाउंट से पढ़ा है सर। इसमें इस अब एंड आपका डिस्पर्समेंट का जो गाइडेंस है और AUM का गाइडेंस है उसमें भी आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ आएगी, तो अब सर आप लिक्विडिटी कितना मेंटेन करके रखेंगे? अभी तक आप 100 करोड़ लेके चल रहे थे बैलेंस शीट पे, अब वो लिक्विडिटी आप कितना एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखेंगे? और दूसरा क्वेश्चन कि आप इक्विटी रेस करेंगे क्या 1000 करोड़ के पहले, 1000 करोड़ AUM के पहले?
दोनों चीजें, एक तो नंबर वन आप क्वेश्चन मुड़ कर दे दो, लिक्विडिटी हमेशा हम 3 महीने की लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं।
ओके।
और हमारे पास में सैंक्शन तो जाता रहता है लेकिन अनड्रॉन होता है, पूरा डिस्बर्समेंट बैंक से भी नहीं लेते हैं। अब जैसे 100 करोड़ है हमारा ब्याज आज की तारीख में है, तो ये हमको आगे बिजनेस करने के लिए हमको जरूरी रहता है। और जब आपके पास में अनड्रॉन रहेगा तो आपके पास में लिक्विडिटी भी मेंटेन आपको अपनी बुक्स में रखने की जरूरत कम पड़ जाती है, उससे भी आपका लॉस जो है वो कम हो जाता है। हम 10-11% से बैंक से लेते हैं, फिर 7-8% सिक्योर्ड में हम डालते हैं, तो 3-4% वो कॉस्टिंग भी लगती है
जी,
उसका भी थोड़ा सा सेव हो जाता है अगर अपने पास अनड्रॉन है। रहा नेक्स्ट 1000 करोड़ के पहले, तो आज एक बार अपन सर क्या है कि इक्विटी का जो रेशियो है वो अपना इस साल का जो फाइनेंशियल 31 मार्च को बनेगा, ठीक है, उसमें हमारा पेट भी बढ़ेगा, चीजें भी बढ़ेगा, ठीक है, तो इस साल में तो कोई हमारा इक्विटी का प्लान नहीं है। जो अभी अपन 600 करोड़ की लोन बुक या 250-300 करोड़ की लोन बुक अपनी बढ़ेगी, उसमें 150 करोड़ के आसपास अपना बुक और बढ़ेगा, ये मोर बढ़ेगा, तो 450-600 करोड़ के आसपास तो अभी तो इक्विटी इसमें जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में अपन इक्विटी जा पाएंगे। हाँ, लेकिन कोई ऐसा इक्विटी वाला मिला जो लॉन्ग टर्म में अपने को सपोर्ट कर सकता है और अच्छी इक्विटी अपने को अच्छी रेट पे दे सकता है तो फिर सोचा जा सकता है, उसके लिए मैं ये भी नहीं कहता हूँ नहीं करेंगे।
लेकिन 600 करोड़ तक आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है?
हाँ, 600 करोड़ तक जरूरी नहीं, अरे हाँ 600 करोड़ तक जरूरी नहीं, लेकिन एक क्या है, अभी हमारा ये जो 62 ब्रांच है ये हमारा 3 स्टेट में है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में
जी,
और अभी हमारा एक्सपांशन 2-3 स्टेट नए और चालू करने जा रहे हैं।
कौन कौन से स्टेट सर?
अभी हमें एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये साउथ हम पूरा चालू कर रहे हैं।
महाराष्ट्र, पुराना AP और फिर कौन से, कर्नाटका?
हाँ, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु, पूरा साउथ वाला हम चालू कर।
ओके ओके,
तो उसको चालू करेंगे तो उसका इम्पेक्ट भी अपने को लास्ट क्वार्टर में आसपास जाके अपने को मिलेगा। 10-15 ब्रांच स्टेट पर, 2-5 ब्रांच स्टेट में चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टीम भी बनाना चालू कर दिया है। और ये पेन इंडिया की जो टीम है वो हम बॉम्बे में बना रहे हैं और बॉम्बे से उसको करेंगे तो काम।
10 ब्रांचेस इन ईच स्टेट सर, ईच न्यू स्टेट, हर स्टेट में 10 नहीं या टोटल 10 ब्रांचेस?
नहीं, एक्चुअल में किसी भी स्टेट में जाते हो सर 5-10 ब्रांच से कम होती नहीं है। एक बार अगर हमने 5-5 ब्रांच भी चालू की तो 2-3 स्टेट में करते हैं तो 15 ब्रांच अपनी होती है। हमने उसमें दिया है 10-15 ब्रांचे हमारे हर साल बढ़ाएंगे
जी।
तो क्या होता है कोई भी अग्रेसिव चीजें तो नहीं करते हैं, लेकिन चालू करने के पहले समझना पड़ता है स्टेट को, चीजें करना पड़ता है, तो वो ब्रांच अपन अभी लगाएंगे उसका इम्पेक्ट 6 महीने बाद आएगा, चीजें आएगा, तो थोड़ा सा देखना।
जी जी सर, लिक्विडिटी का मुझे क्लियर नहीं हुआ आपके आंसर से। लिक्विडिटी आपने कहा कि 3 महीना मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज वाला भी बात आपने कहा, तो अल्टीमेटली हमको अगर बैलेंस शीट अगर नेक्स्ट ईयर के लिए देखनी है तो क्या ये 100 करोड़ का नंबर कॉन्स्टेंट रहेगा सर जो आप लिक्विडिटी अपने हाथ में रखेंगे? बिकॉज अगर 300 करोड़ का डिस्बर्समेंट है तो आपको 75 करोड़ चाहिए अपने हाथ में।
हाँ,
3 महीने के
बिल्कुल,
लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, राइट? 100 करोड़ से ज्यादा?
100 करोड़ से ज्यादा।
ओके सर, क्रेडिट लॉसेस का क्या आपको दिख रहा है? जनरली आपके क्रेडिट लॉसेस होते नहीं है, तो अभी आपको कहीं से कोई दिख रहा है जहां पर क्रेडिट लॉस हो सके, कोई कोई प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स है या कोई डिस्ट्रिक्ट्स है जहां वो कुछ प्रॉब्लम हो, या अभी भी क्रेडिट बेसिस पे आप प्रिस्टीन चल रहे हैं एकदम?
देखो आपने जो चीजें कही उसमें दो चीजें है सर, अगर आपकी क्रेडिट अच्छी होगी ठीक है ना तो आपको लॉसेस कम होंगे, दूसरा आपका हमारा जो एलटीवी रेशियो है वो 50% के आसपास एलटीवी रेशियो में करता है, तो हमारे पास बुक्स में मार्जिन रहता है, तो उस मार्जिन की वजह से क्या होता है अगर कोई डिफॉल्टर भी हो गया ठीक है ना
तो रिकवर हो जाता है,
हाँ तो भी रिकवर हो जाता है, अगर वो क्या है वो रेशियो अगर बराबर आ गया जितना आप पैसा मांग रहे हो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी है तब जाके दिक्कत होती है, अगर एलटीवी रेशियो अगर आपका अच्छा मेंटेन है तो आपका रिकवर होता है।
सर एलटीवी में आपका ट्रेंड देख रहा था कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, आप ऑलरेडी काफी कम एलटीवी पे थे अभी और थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये आप आपकी तरफ से ये एफर्ट हो रहा है कि एलटीवी को और कम किया जाए, या जस्ट ये एवरेशन है एक साल में ही ऐसा हुआ है आगे से वापस वो 40-50% हो जाएगा?
नहीं एक्चुअल में क्या है हमारा फोकस ये होता है कि किसी भी क्लाइंट को 50% हम एलटीवी से ज्यादा उसको लोन ना दे रहे, तो जो एवरेज है वो 40% एवरेज है ठीक है ना, तो आप ये इंडिविजुअल जो है वो 50% के आसपास रहता है, अगर मान लो किसी को लोन कम अगर चाहिए और प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा है तो रेशो अपना एवरेज एलटीवी रेशो कम आ जाता है
जी। इसमें तो यही यही लेवल पे आप कंटिन्यू करेंगे राइट सर?
जी जी सर।
ओके ओके सर एक फाइनल क्वेश्चन उसके बाद मैं वापस क्यू में जाता हूँ सर, जो प्रीपेमेंट्स होते हैं सर और जो बीटी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको कितने इस साल पड़े? आपने अभी मेंशन किया 84 का आपने डिसबर्समेंट किया, माई गेस इज वो ग्रॉस डिसबर्समेंट था, और नेट डिसबर्समेंट 79 का है, क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है सर? वो 5 करोड़ बीटी आउट या प्रीपेमेंट का कुछ नंबर दे सकते हैं सर आप?
देखो ऐसा है ना सर, आपका 10% के अप्रोक्सीमेंट में आपका बीटी और प्रीपेमेंट
दोनों मिला के सर,
दोनों मिला के सर, जिसमें 7% बीटी के आसपास होता है और 3% अपना प्रीपेमेंट ऑन फंड के ऑन सोर्स के करीब होता है, तो तकरीबन 10% करीब अपना ही होता है।
सर इसमें ट्रेंड क्या है सर, स्पेशली बीटी आउट में क्या बैंक्स अग्रेसिव हो रहे हैं या कम अग्रेसिव हो रहे हैं आपको आपके एसेट्स को लेकर?
सर एक्चुअल में बीटी इस कारण से नहीं होता है, हर आदमी का एक मोटो होता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना
जी,
ये तो अगर मान लो अगर अपन ने 12% में लोन ले रखा और अपने कहीं से 8-9% मिलेगा तो अपन भी बीटी कराएंगे, तो ये बीटी इज अ प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कोई आपका पूरा पोर्टफोलियो खाली हो गया चीजें, ये प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता रहता है और सभी का बीटी होता है, अपने पास भी दूसरों का बीटी आता है, अगर 10% अपन बीटी अपने यहाँ से जाता है तो 10% बीटी अपने यहाँ पे भी आता है।
जी 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 सर आप ओके सर और क्वेश्चंस हैं मैं लेकिन क्यू में वापस जाता हूँ, दूसरे लोग भी हैं, आई कम बैक सर, थैंक यू वेरी मच सर।
ओके थैंक यू,
थैंक्स अगस्त्य। वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रूपेश। रूपेश यू कैन अनम्यूट।
जय जयेंद्र सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने किया सर, आपने बोला था FY23 में ग्रोथ आएगा और आपने डिलीवर कर दिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट।
थैंक यू सर।
हाँ सर मेरे दो तीन क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन सर ये है कि आप ये बता सकते हैं कि पुरानी जो 37 ब्रांचेस है उसमें जैसे पर मंथ कितना डिसबर्समेंट हो जाता होगा कोई नंबर, और नई 25 ब्रांचेस में अभी वो क्या लेवल है अप्रोक्सीमेटली?
नहीं सर अभी हमारा दोनों बाइफरकेशन तो हमने नहीं किया है, हमने टोटल पे ही हमारे पास में फिगर है, वो भी आपको इमीडिएट नहीं दे पाऊंगा, पुराने में कितना हो गए में कितना है ये पूरा सबका एक साथ में
सर। रफली आप बता सके कि नई ब्रांचेस में भी पुरानी ब्रांचेस के 50% डिसबर्समेंट में पहुंच गई है कुछ इस तरह से अगर आप बता सके?
देखो 25 लाख रुपए के एवरेज आसपास अपना पुरानी ब्रांचों से बात करना है।
25 लाख पर मंथ?
हाँ 25 लाख।
और नई नई वो लेवल पे आ गई है नई ब्रांचेस?
नहीं बाकी का एवरेज है सर, अपना 25 लाख रुपए आप उसका पकड़ लो और बाकी का नई ब्रांच हो।
अच्छा पुराने डिसबर्समेंट में आप बोल रहे कि पुराने का 25 लाख पकड़ लो और बाकी का फिर नई ब्रांचेस से आ रहा है?
हाँ दोनों का मिक्स आता है।
अच्छा तो पुरानी अगर मैं मतलब 25 लाख का अगर ओके ओके
एवरेज उसमें क्या होता है, कोई ब्रांच छोटी ब्रांच भी है, कोई रूरल में ब्रांच भी है, तो टोटली टोटली ब्रांचों का एवरेज आ गया अपना।
अच्छा ओके और ये मतलब साल के एंड तक मतलब आपने बोला भी है प्रेस रिलीज में कि कॉस्ट टू इनकम काफी हमारा कम हो जाएगा, तो सारी नई ब्रांचेस की प्रोडक्टिविटी पुराने ब्रांचेस के लगभग बराबर हो जाएगी।
भाई आपका आपका अगर मान लो एयूम बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी जो कॉस्टिंग जो अभी बढ़ी हुई दिख रही है वो आपको ऑलरेडी कम हो जाएगा।
अच्छा ओके ओके सर, दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास डीपीडी नंबर्स है तो आप मुझे अगर डीपीडी नंबर दे सकते हैं 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 and 90 plus।
डीपीडी में हमारा जैसे ऑन टाइम है वो 85% करीब आता है, 0 to 30 days में अपना 6% करीब रहता है, 30 to 60% में अपना रहता है 4.58% करीब रहता है, 60 to 90 में अपना 2.25% करीब रहता है। ये हमारा उसका डीपीडी बकेट।
एंड ये जो आपने 15 नई ब्रांचेस बोली है FY24 में ओपन करेंगे, ये सारी नई ज्योग्राफीज पे करेंगे?
हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नया,
एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं होगा राजस्थान
मध्य प्रदेश? एग्जिस्टिंग में जरूरत पड़ेगी तो वो तो है ही है, उसमें करेंगे क्या, उसमें कोई ब्रांच जैसे कभी क्या होता है ना जब दो लोकेशन आ जाती है और बीच में सेंटर बनता है तो कभी मर्ज करनी पड़ती है, नई ब्रांच खोलनी पड़ती है, वो वहां चलेगा, वहां 62 की 65 हो सकती है या उसके आसपास चलेगी, लेकिन ये जो टेरिटरी है तो अपन 3 ही नई टेरिटरी को लेते हैं, वहां पर ब्रांच नहीं आएगी।
अच्छा ओके ओके एंड सर आपने आपने बोला था कि हमारी मतलब एक अपर लिमिट है कि जो जो लिमिट पे हम लैंड कर सकते हैं 22-23%, उससे ज्यादा हम लैंड भी नहीं करना चाहते, लास्ट हमारी जब बात हुई थी तो आपने ये बात कही थी, तो ये FY24 में मतलब आपका स्प्रेड कैसे रहेगा, क्योंकि थोड़ा FY23 में थोड़ा स्प्रेड कम हुआ है क्योंकि बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं वो सब हुआ है, तो 24 में स्प्रेड कैसा रहेगा, मतलब नए लोन कवर रिकवर कर जाएंगे हम स्प्रेड बेस्ड ऑन न्यू लोन्स?
नहीं स्प्रेड तो देखो क्या है, जो रेपो रेट का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट रहेगा, बाकी अपन इसी रेट के आसपास ही अपन काम करेंगे ताकि स्प्रेड अपने घटे नहीं, अपने स्प्रेड तो चाहिए।
सो नए लोन ऐसा नहीं है कि आपने, मैंने देखा कि एवरेज आपने 23 कुछ लिखा है 23.12, तो ऐसा नहीं है कि नए लोन 24 पे हम दे रहे हैं, वो भी 23 पे ही दे रहे हैं?
देखो एवरेज वो आता है कि 24 भी आता है, कोई 21 भी आता है, कोई 18 भी आता है, तो अपन एक एवरेज पकड़ सकते हैं, इसके आसपास ही हम चलेंगे, अपन ये नहीं कह सकते पूरी 100% की 24 पे आ जाए।
बट नए लोन्स में पूछो सर, मतलब
हाँ नए लोन को भी एवरेज
अपना ही है, 50 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट मार्जिन बढ़ा के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे?
वो एवरेज देखो क्या होता है ना सर, आप कितना भी मेंटेन करो एवरेज इसके आसपास ही आएगा, मैं बढ़ा के ले लूंगा तो मुझे कम भी करना।
अच्छा ओके और आपने एक और चीज लास्ट टाइम बोली थी सर कि 500 करोड़ को क्रॉस हो जाएगा हमारा AUM, तो क्रेडिट रेटिंग की हम कोशिश करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो जाए?
बिल्कुल बिल्कुल, तो बस अब पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है वो भी
तो ईयर एंड तक मतलब हम मान के चले कि मार्च तक एटलीस्ट कि हम कर लेंगे, एटलीस्ट क्रेडिट रिव्यू हो जाएगा करेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सर।
अच्छा ओके ओके ठीक है। और एक दूसरी बात सर ये थी कि जनरली मैंने देखा लास्ट 3-4 सालों में कि Q4 हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रहता है बट Q1 में थोड़ा पीक हो जाता है, 23 में भी थोड़ा ऐसा ही रहा है, बट लेकिन इस साल आप बोल रहे हैं कि Q4 का जो डिसबर्समेंट रन रेट है वो हम मेंटेन कर लेंगे, तो ये मतलब व्हाट इज डिफरेंट दिस ईयर, ये साल क्या अलग किया हमें ये कॉन्फिडेंस है?
देखो एक्चुअल में क्या कॉन्फिडेंस इस साल का दिया है कि आपका नई ब्रांचें हैं, टीम आपकी बढ़ गई है, ठीक है, आपके पास में टीम अच्छी मजबूत है, आपका सेगमेंट जो है उस सेगमेंट में आपका जितना खराब समय था वो निकल गया, तो कॉन्फिडेंस तो रहेगी रहेगा ना, फिर आपने जो काम किया उस काम के अंदर जो क्वालिटी मेंटेन की वो चीजें हैं, हम ऐसा नहीं कोई ऐसे खराब टाइम में भी हम AUM के पीछे भाग गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम कर दिए या हमारा कोई सेगमेंट चेंज कर दिया है, वो चीजें नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो बेटर है, अच्छा है और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा
और ये भी इसको आज में बिजनेस करके भी ये प्रूव कर दिया है कि हम जो सेगमेंट कर रहे हैं वो सही है और हम उसमें काम कर पाएंगे।
अच्छा ओके और सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो जो ये नया 300 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे FY24 में उसमें लैप कितना होगा?
सर हमारा जो अभी भी जो लैप है वो हमारा 40% लैप है, 60% हमारा हाउसिंग।
तो वो वही वही रेशो लेके हम चलेंगे।
हाँ वही 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 मेंटेन होगा। अभी हमारा 66% जो है वो हाउसिंग लोन है और 33.86% हमारा लेव।
अच्छा ओके ओके ठीक है सर, मैं आई विल कम बैक इन द क्यू। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस।
ओके थैंक यू थैंक
थैंक्स रुपेश। वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कमलेश। कमलेश यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन।
हेलो सर नमस्ते। मेरा सवाल यह है आपसे कि हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो 60% के भी ऊपर गया है, सो ये जंप कैसे आया है और दूसरा हम इसे किस तरह से सेटल करने वाले हैं और इसे कैसे अचीव करने वाले हैं सर?
जो कॉस्ट जो आपका कॉस्ट बढ़ा है ना, कॉस्टिंग तो आपका जो हमारा एक तो रेपो रेट पड़ी उससे कॉस्टिंग का इम्पैक्ट आया और दूसरा हमने जो नई टीम बनाई है उसका इम्पैक्ट है, नई ब्रांच एक्सपेंशन में उसका नई टीम है और जैसे इसमें बिजनेस होगा तो आपका वापस उसी के आसपास वापस आ जाएगा।
अच्छा मेरा एक और सवाल ये है कि हमारा आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा जो पर ब्रांच सेटअप कॉस्ट है वो कितना है और दूसरा हमारा मंथली और एनुअल रनिंग कॉस्ट पर ब्रांच कितना है जो भी नए ब्रांचेस ओपन?
सर अपना जो उसका जो फिक्स कॉस्ट है वो आती है अपनी 4 से 5 लाख रुपए के बीच में और अपना जो फिक्स कॉस्ट है वो सेटअप कॉस्ट वगैरह जो 4 से 5 लाख के आसपास आती है और उसके बाद में मंथली जो एक्सपेंसेज है वो 1.5 के आसपास में उसका सैलरी और रेंट और ये आता है 1.5 लाख रुपए पर।
अच्छा ओके सर, और एक और था हमारा हमने जो ब्रांचेस एक्सपांड किए हैं तो हम उसके साथ मैनेजमेंट टीम को भी एक्सपांड करने के लिए देख रहे हैं और दूसरा जो नए स्टेट्स की तरफ हम जा रहे हैं तो किस तरह से हम अपनी मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब किस तरह से मैनेजमेंट नए ब्रांचेस को केटर करेंगे या उसको उसकी ग्रोथ के लिए देखने वाले?
देखो हमारे पास में ऑलरेडी टीम तो पूरी सेटअप है तो अभी जो चल रहा है उसमें कोई टीम की जरूरत नहीं है, उसमें कोई जाएगा तो एक आदमी नया लाना है और बाकी नीचे जो ब्रांच में अगर कहीं कहाँ जहाँ गैप है तो वो फुलफिल होगा। नए स्टेट के लिए नए लोग आएंगे, नई टीम आएगी, एक्सपीरियंस टीम आएगी, वो चीज है और नए गोल के हिसाब से जो चीज अपने को कैपेबल चाहिए इंडस्ट्री के लोग वो अपन लेंगे उनको।
ओके सर थैंक यू सर।
सर जस्ट एज अ फॉलो अप टू कमलेश क्वेश्चन, आप लोग ने ऑलरेडी टीम्स आइडेंटिफाई करी है एंड लोग आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब किस टाइप के लोग आप टारगेट कर रहे हैं अपने टीम में लेके आने के लिए? बिकॉज सदर्न ज्योग्राफी का जो डेमोग्राफिक्स है वो थोड़ा नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट से अलग होगा जहां अभी तक आप ऑपरेट कर रहे थे ना, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बोल पाएंगे?
अभी हमारे इंटरव्यू चल भी रहे हैं और टीम से मिल भी रहे हैं, जिन जिन स्टेट में अपन जाएंगे उस स्टेट में उन आदमी का कम से कम 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो और उसी में वहीं के रहने वाले हो जो उनका पूरा एरिया का नॉलेज हो, वही टीम हम बनाएंगे और उन टीम को ले जाएंगे। ऐसा नहीं कोई जो जानता नहीं उस टीम से अपन वहां पे काम करें क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग चीजें हैं। अगर रूरल में भी हम जाते हैं तो हम रूरल की ही टीम लेते हैं जो वहां पे लोग खुद रह रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं वैसे लोग।
तो जो हमारा क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस है वो कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड होगा?
वो क्रेडिट वाला है वो सेंट्रलाइज तो रहता है, उसमें हमारे पास हर स्टेट में क्रेडिट मैनेजर बैठता है तो वहां की क्रेडिट का तरीका हर जगह अलग अलग होता है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 5-10% का डिफरेंस रहता है। कहीं लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन अलग वो चेंज होता है, बाकी कुछ कॉस्टिंग वाइज कुछ डीएलसी वाइज वो टेक्निकल है वो अपने को देखना पड़ता है, कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ता।
अगस्त्य यू कैन आस्क योर फॉलो अप क्वेश्चंस।
थैंक यू। एक्चुअली पिछले दोनों लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछ लिए लेकिन दोनों के कुछ फॉलो अप्स हैं। तो पहला क्वेश्चन एक क्रेडिट रेटिंग पे था सर, वो आपने आंसर दिया। जो अपनी नेक्स्ट क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट अपग्रेड होगा अपना सर, उससे अपना कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कितना फर्क पड़ेगा?
सर एक्चुअल में क्या होता है ना सर, 0.25 बेसिस तो कम हो जाए, 0.25 से लेके 0.50 बेसिस में कम होगा क्योंकि आप मान के चलो सर रेटिंग एजेंसी का एक पैरामीटर से है तो 500 से 600 करोड़ के आसपास जब होती है तो एक नोट नीचे देते हैं, पर ए रेटिंग में जाने के लिए आपको 800 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में आपकी बुक होनी चाहिए।
अच्छा
और सर ये जो नेक्स्ट ये जितने भी आपके क्रेडिट री रेटिंग्स होगी, आप जो बेनिफिट आएगा वो तो आप पास थ्रू पूरा पूरा कर देंगे, राइट? आप अपने पास कुछ नहीं रखेंगे?
नहीं, कहाँ अपन पास कहाँ करेंगे, अपने पास ही रहेगा।
नहीं, मतलब आपके कस्टमर्स को आप पास ऑन कर देंगे ना, या अपने प्रॉफिट्स में कुछ
नहीं
रोक
यार,
देंगे? मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट अगर कम हुआ तो आपका लेंडिंग रेट भी आप उतना कम कर देंगे, राइट?
नहीं, हम जो भी करते हैं सर फिक्स रेट पे हम करते हैं, क्योंकि रूरल
अच्छा
सेगमेंट में फिक्स रेट पे चलता है। रेपो रेट
अच्छा
अगर बड़ी है तो उसका लॉस हमने बुक किया है, जो आपको बताया सर आपकी कैसे
जी
प्रॉफिट कम
जी
होगा, और ये
जी
रेपो रेट कम होगी तो वो प्रॉफिट बुक्स में रहेगा। अगर मान लो
अच्छा
0.5 बेसिस कम रहेगा वो भी बुक्स में रहेगा।
तो सर मुझे ये लग रहा था कि आपका ये जो हिट आया है इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से, वो आपने इसलिए रखा क्योंकि डिमांड का थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, वो वैसा सिचुएशन नहीं है, आप फिक्स पे
नहीं
ही बिजनेस करेंगे।
जी जी सर,
अच्छा, तो ये जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो आपकी बॉटम लाइन में आ जाएगा सर, वो आपके
हाँ
प्रॉफिट में
बॉटम
आएगा।
लाइन में आ जाएगा,
ओके ओके
क्योंकि अभी भी बॉटम लाइन पे इंपैक्ट हुआ ना तो बॉटम लाइन में आएगा सर।
जी, मैं समझा सर। मैं उसको कोरिलेट कर रहा था कि डिमांड का इश्यू था इसलिए आपने पास ऑन नहीं किया प्राइसेस। अच्छा, ओके ओके। तो सर इसमें कॉम्पिटेटिव प्रेशर नहीं आता आपको? अगर आप अगर मान लीजिए सिस्टम में अगर अगर सिस्टमिक लेवल पे इंटरेस्ट रेट कट हो तभी भी आप पास ऑन नहीं करेंगे? अच्छा
सर हमारा फिक्स रेट में है ना सर, फिक्स रेट में कंडीशन ही नहीं है ना। अगर वो होती तो जो अपना
हाँ,
इम्पेक्ट आया उसको कंपनी की बुक्स पे क्यों आना था, वो तो
समझे 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 समझे। ओके ओके सर, दूसरा क्वेश्चन सर स्लाइड नंबर 17 पे था, जो कि आपने एएलएम प्रोफाइल दिया है सर, इसमें अगर आप इनफ्लोस का भी प्रोफाइल दे सकें नेक्स्ट क्वार्टर से तो काफी हेल्पफुल रहेगा कि हर बकेट में आपके इनफ्लोस कितने हैं। स्लाइड
ठीक है, वो भी बना।
17 जी, जनरली सर वो आपका वो एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन में ये डाल रहे हैं, अगर यही चीज आप इनक्लोज भी डाल दें तो देयर विल बी वेरी गुड सर।
ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सिस्टम डाल दें।
जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट सर, ग्रेट
थैंक
क्वार्टर सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक
थैंक्स
यू विनय भाई।
थैंक्स थैंक्स अगस्त्य। वील टेक अ फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम कमलेश। कमलेश, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन।
सर, अभी हमारा एनएचबी का बोरिंग कितना है और हम एनएचबी का शेयर और कितना इंक्रीज करने के लिए प्लान कर रहे हैं?
किसका सर, वापस बोलो सर। एनएचबी
एनएचबी
का
का
सर,
बोरिंग
एनएचबी
हमारा
का सर, एनएचबी का अपना जो है सर वो तकरीबन हमारा 127 करोड़ के आसपास है सर।
सर, और हम इसे और कितना इंक्रीज करने के लिए प्लान कर रहे हैं?
सर ये 7 से 7.5% में, ये अभी थोड़ा और बढ़ेगा, अभी 35। एक्चुअल में क्या एनएचबी का बुक के ऊपर है, बुक के ऊपर आपका वो तकरीबन देते हैं 20% के आसपास देते हैं, 20 से 25% करीब देते हैं, तो हमने ऑलरेडी अवेल कर रखा है। जैसे आपने 435 की बुक है, 25% का आप 108 करोड़ है, 127 करोड़ अपन ले रखा, तो उसमें रीपेमेंट चला गया, तो एवरेज वो 20 से 25% ही देता है।
ओके
जितना उनकी
सर,
जितना उनका लिमिट है वो पूरी यूटिलाइज कर।
ओके सर, ओके। उसके मैं दूसरा ये पूछना चाहता था कि हमारा जो हम किस लेवल ऑफ एओएम या नेटवर्क पे हमारा क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं?
सर क्रेडिट रेटिंग के लिए भी बताया था सर कि अपना क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई होगा, अपना 500 से 600 करोड़ की एयू बुक होगी तब अपना एक नॉच ऊपर होगा, और उसके बाद में अपना वापस जो होगा वो अपना 800 से 1000 करोड़ के आसपास बुक होगी, तो वहां पर जाए। इनकी क्रेडिट रेटिंग की एक एवरेज कंपनियों का निकाल के देखेंगे आपको वहीं मिलेगा।
अच्छा सर, थैंक यू सर।
थैंक्स कमलेश। वी विल टेक अ फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम रुपेश।
जय जय जिनेंद्र सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन। सर पहला क्वेश्चन ये था कि हमने एक नया हेडक्वार्टर बनाया है उदयपुर में, लास्ट टाइम आप SAP का भी कुछ बोल रहे थे, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप अपडेट दे सके कि अंडर राइटिंग में कैसे टेक्नोलॉजी यूज होता है, कलेक्शन में कैसे टेक्नोलॉजी यूज होता है, कैसे था पहले और अब क्या कर रहे हैं, तो दैट बी रियली हेल्पफुल।
बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। अभी हमारा पहले हमारे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर था ऑफिस, जहाँ पे हमारे बहुत अलग अलग फ्लोर पे बटे हुए थे। अभी पूरा अपना
जो हेड ऑफिस है पूरा एक सिंगल बिल्डिंग में आ गया जो ग्राउंड प्लस फोर चार मंजिल की है और उसमें तीन चार 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 हमारे कॉन्फ्रेंस रूम है बने हुए हैं, 100 लोगों का ऑडिटोरियम बना हुआ है जहाँ हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह पूरे प्रोग्राम चलते हैं और पूरी टीम हमारी एक साथ बैठती है, अलग अलग वर्टिकल पूरे हो गए। और पहले हमारा क्या था, फर्नीचर था तो मिसमैच था, अभी एक ही फ्लोर पे और एक ही बिल्डिंग में बैठने से काम पे काफी इम्पैक्ट भी बढ़ा और एक लाइनअप जो था ना वो भी हो गया और गैप भी हमारा कम हुआ, उसकी वजह से हमको काफी स्मूथनेस आ गई चीजों पे। और आईटी टीम भी हमारे पास में अच्छी है और बिजनेस वाले भी लोग अच्छे हैं, तो जो गैप था वो गैप एक ही जगह बैठता है।
सो अभी अभी मतलब जैसे मैं पूछू कि एक कस्टमर अगर मैं लू तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक एक मतलब अभी आईटी सिस्टम हमारी है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आईटी सिस्टम में मिल जाएगी कि इसकी इनकम कितनी थी, क्रेडिट स्कोर कितनी थी, ये इसकी वाइफ क्या करती है, फैमिली क्या करती है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी पूरी एक एक जगह पे आईटी सिस्टम इतनी हमारी डेवलप हो गई है।
बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, एक ही जगह।
अच्छा ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि हम मुझे मुझे जितना याद है कि हम DSA से सोर्सिंग नहीं करते कोई, बट अगर आप इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे देती हमारी सोर्सिंग कैसे होती है।
सर DSA से भी सोर्सिंग जो होती है वो हमारी कम है, अभी हमारी जो है ना इससे सोर्सिंग हमारी ज्यादा है डायरेक्ट वाली।
तो वो क्या कुछ नंबर अगर दे सके सर उसमें
DSA का सोर्सिंग हमारा 91% करीब हमारा डायरेक्ट है और 10% करीब DSA का।
अच्छा ओके ओके। और सर लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी आप बोल रहे थे कि HDFC बैंक से सैंक्शन आने वाला था, तो थोड़ा लेंड हमारा जो बोरोइंग प्रोफाइल है उसमें क्या चेंज हुआ है और कैसे होगा वो अगर आप थोड़ा बता दें कि FY24 में बोरोइंग मिक्स कैसे होगा।
HDFC का सैंक्शन आ चुका था लेकिन उन्होंने आपको जो दिया है टेन्योर वो कम दिया इसलिए हमने उनको अवेल नहीं किया।
अच्छा ओके। और अगले साल ये मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NHB वो सब में कैसा रहेगा सर हमारा बोरिंग मिक्स इन FY24।
एक्चुअली में सर हमारे पास में 22-23 के आसपास हमारे पास में लेंडर है।
ओके
ठीक है ना, इतने सारी बैंक्स और FIs और वगैरह सब चीजें हैं तो अब वो इशू नहीं रहा कि अपने को पैसा मिलने का। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो अपना जो 300 करोड़ अपने को चाहिए वो बहुत इजीली मिल जाता है, उसको चाहे तो अगर एक क्वार्टर में पूरा अपन मिल जाएगा पैसा, पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं सर।
अच्छा ओके। बट ये यही मिक्स रहेगा सर जो बैंक्स का और जो स्प्लिट बोल रहा हूँ मैं सर कि NHB आई थिंक हमारा 7-8-10% है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आई डोंट नो 25-30% वो वैसा ही रहेगा।
उसमें ज्यादा चेंजेस इसलिए नहीं रहेंगे, अगर कहीं होगा तो सर 1-4% प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि अपने को तीनों चाहिए, बैंक भी चाहिए, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी चाहिए और NHB भी चाहिए।
अच्छा ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि लास्ट टाइम आपने बोला था कि AU और आवास वो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, तो जो हमारी 62 ब्रांचेस है उसमें आप अगर थोड़ा बताएंगे कि वो मतलब कंपटीशन अग्रेसिव हो रही है कि हम यू नो कस्टमर ढूंढ पा रहे हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए।
एक्चुअली में कंपटीशन तो क्या है सर, मार्केट बहुत बड़ा है ठीक है और उनको जितना टारगेट करना चाहिए उनका बिजनेस भी होता है और हमारा बिजनेस भी होता है, सबकी अपनी अपनी टीम्स होती है और सभी अप्रोच में जाते हैं बिजनेस में तो उनको भी मिलता है हमको भी मिलता है, तो अपन ये नहीं कह सकते सर कंपटीशन कोई आपस में कंपटीशन है, अगर कंपटीशन होता तो हम इस रेट बिजनेस नहीं कर पाए, तो उसमें सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की टीम्स होती है, सबकी अप्रोच, सबका टारगेट क्लाइंटल वो अलग अलग होता है, हम रूरल में जा रहे हैं वहां वो रूरल में नहीं आ रहे हैं, वो बड़े बड़ी सेगमेंट में है तो हम छोटी सेगमेंट में है, उनकी टिकट साइज अलग है हमारी टिकट साइज अलग है, वो सब चीजें बाइफर्केशन अलग अलग होता है तो हर कंपनी का थोड़ा अलग अलग होता है।
तो सर
जितना टारगेट
ओके तो जितने हमारे बोरोवर्स है उसमें हम कह सकते हैं कि हम ही ओनली लेंडर है, मतलब अगर समझ लो कि एक ही लोन होगा, समझ लो होम लोन होगा कोई आदमी का या पता नहीं मल्टीपल लोन्स होंगे कि नहीं पता नहीं, बट हम ही सिंगल बोरोवर है मोस्ट ऑफ द केसेस, सिंगल लोन अकाउंट से ही है कि जो हमारा बोरोवर है उसके मल्टीपल लोन अकाउंट्स।
सर 99% सिंगल बोरो ही होते हैं, क्यों हम जो दे लोन देते हैं वो पहली बार आदमी लोन लेता है और हमारी उसकी सिबिल भी हमारे यहाँ से ही स्टार्ट होती है, माइनस वन मार्किंग से होता है, तो उसके पास मल्टीपल लोन होना था तो कोई नी के बराबर ही।
अच्छा, तो ज्यादातर हमारे कस्टमर
सिंगल सिंगल बोरो
क्रेडिट कस्टमर से।
जी जी
ओके ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
Anybody else who wishes to ask a question may use the option of raise hand. Yeah, Namrata, you can go ahead and ask your question.
जय जिनेन्द्र विनोद जी, आई हैव मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो अपना एनएससी का लिस्टिंग का क्या होने वाला, क्या क्या ट्रैक किधर है, वेयर आर वी ऑन दैट?
बहुत बहुत नमस्ते जय जिनेन्द्र। बिल्कुल एनएससी वाला जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, जिनकी उनकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो अपनी चल रही है, और जो अपना 3 साल का उन्होंने जो बुक में मांगा था कैपिटल वो अपना कम्प्लीट हो चुका है, और उसके लिए अपन ने मर्चेंट बैंकर को भी अपन ने काम स्टार्ट करने के लिए दे दिया है, रिजल्ट्स भी आए हैं, तो नेक्स्ट मंथ से ये सब चीजें चालू होते हैं, तो मेरे हिसाब से 3-4 महीने में एनएससी में अपन लिस्ट होगा।
ओके थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन था, अभी एज ऑफ टुडे अपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं?
टोटल एम्प्लॉय भी नंबर है 523 मास्टर।
ओके, और आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लाइक 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स का कोई विजन है आप जो बताना चाहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअल में हमारा इस फाइनेंस के अलावा हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारी एक ही बिजनेस है जो इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को चला रहे हैं, और सेकंड जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसी में साथ में काम कर रही है, और अभी 3-4 स्टेट अगर नए चालू करते हैं तो ग्रोथ तो 100% होना ही है, और जो खराब समय था वो भी निकल गया, कंपनी की कैपिटल भी आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर हमारे खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास में अच्छे हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हमारे पास में अच्छे हैं, मतलब काम करने के अलावा कुछ चीजें बची नहीं है, इसलिए अब कोई स्ट्रेस प्रेशर चीजें वो तो सब चीजें खत्म हो गई, और कंपनी 2002 से चल रही है तो कम से कम 20-22 साल का हमारा एक्सपीरियंस भी है, जो खराब समय एक कंपनी के लिए इससे बुरा समय नहीं आ सकता, जिन चीजों को भी अपन निकल के और बहुत स्मूथली तरीके से अपन निकल चुके हैं, तो अब कॉन्फिडेंस भी टीम का भी पूरा कॉन्फिडेंस है और आगे बढ़ना ही है, तो 3-4 साल में जो है 1000 करोड़ बहुत जल्दी आपको हम 2-3 साल में आपको नंबर देंगे, और वहां से जर्नी स्टार्ट होगी तो फिर रुकने का तो कोई जरूरत है नहीं कोई किस वजह से, और जो क्वालिटी और जो सेगमेंट और जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भी आगे बढ़ते रहेंगे।
तो आप बोल रहे थे 3 साल में 1000 करोड़ का?
हाँ, मतलब अपना अगर मान लो ये नंबर फिगर जो होता है साल में 600 करोड़ है तो जो डिस्बर्समेंट 300 करोड़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में 62 ब्रांचों का फुल फ्लेश आ जाता है, तो 400 करोड़ से 400-500 करोड़ के आसपास डिस्बर्समेंट कर रहे हैं तो 250 और नेक्स्ट ईयर में बढ़ेगी, और अगले वाले में अपने 1000 करोड़ आराम से अपने।
और ये अचीव करने के लिए हमारा कोई बिजनेस मॉडल सेम ही रहेगा या हमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे?
नहीं, बिजनेस मॉडल सेम ही रहेगा, बिजनेस मॉडल चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस मॉडल चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं, 1000 करोड़ तक बिजनेस मॉडल को चेंज करने की जरूरत नहीं, ये बिजनेस मॉडल तो चलेगा ही चलेगा, हो सकता है कोई एक वर्टिकल अपन कोई दूसरा चालू करें, जो भी हम पूरा रूरल में ही काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई अर्बन में या टायर 1 या टायर 2 कैपिटल में अगर कहीं हमको लगता है कि कर पाए तो कर सकते हैं, बाकी ये सेगमेंट जो है उसी को हम करेंगे।
ओके, थैंक यू विनोद जी, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।
एनीबॉडी एल्स हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन? सो सिंस देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस वी विल एंड द कॉल हियर नाउ। On behalf of SRG Housing Finance, I thank you all for participating on this call, and I thank the management for giving us their valuable time and giving in-depth answers to all the questions. Thank you so much, sir.
Thank you.
Thank you. Thank you.